हेलो गाइस,
व्हाट इज अप।
मेरा नाम है रोहित
और मैं हूं आयुष।
WWE हो या फिर ऑल इलीट रेसलिंग,
ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट,
रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला,
क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा।
वेलकम गाइस, आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और रेसलमेनिया 40 इज इन द हिस्ट्री बुक्स, और जैसा रेसलमेनिया 40 को बिल्ड किया जा रहा था कि ये होने वाली है ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारी दोनों नाइट्स पर ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको फैंस कभी भी नहीं भूलने वाले, सालों तक छोड़ो क्या, कभी भी नहीं भूलने वाले। नाइट वन पर कुछ स्पेशल चीज़ें, नाइट पर कुछ स्पेशल चीज़ें। तो आज ये एपिसोड होने वाला है रेसलमेनिया की नाइट वन और नाइट टू पर जो भी मैचेस हैं उनकी रेटिंग के ऊपर। एंड गाइस, क्योंकि मैचेस 13 हैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि जो मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा बात कर पाएँ, अपने ओपिनियन दे पाएँ। तो हो सकता कुछ मैचेस में हमको अपनी बात थोड़ी सी कम रखनी पड़े, लेकिन एक्साइटमेंट भाई बहुत ज़्यादा है। जस्ट अभी रेसलमेनिया नाइट टू ख़त्म हुई है, कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश कर ली और भाई रॉक ने भी सबको कह सकते हैं शॉक करते हुए जो परफॉर्मेंस डिलीवर करी है नाइट वन में। मैचेस की तो डेप्थ में जाएंगे, मतलब अच्छे से जो अंदर की बातें होती है ना, बिल्कुल जैसे भाई लोग आपस में बात करते हैं वैसे डिस्कशन होने वाली है। एंड अभी नया WWE का एरा भी आ गया है, तो पॉडकास्ट तो और आने वाले मंडे नाइट रॉ के बाद भी डेफिनेटली काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ होंगी। लेकिन मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ है आयुष। और आयुष, अभी जो मैं फील कर पा रहा हूँ, बस मुझे लगता नहीं मैं उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अगर ये एक वीडियो के फॉर्म में होता पॉडकास्ट तो शायद और अच्छे समझ में आता कि क्या एक रेसलिंग फैन होने का मज़ा है इस समय रेसलमेनिया अब जब ख़त्म हो गई है। तो
भाई देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वी आर इन द पॉल लेवेक एरा। ये एक मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए बोली जा रही है। दिस इज़ रियल, दिस इज़ एब्सोल्युटली रियल। और ये रेसलमेनिया ट्रिपल एच ने बोला था एक मार्क लगाएगी, एक माइलस्टोन रहेगा कि क्या आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं WWE से। और जो दो नाइट्स में रेसलमेनिया के आज देखने को मिला, कल देखने को मिला था, आई थिंक कि ये बात क्लियर है कि सिर्फ रेसलिंग फैंस के लिए नहीं, बिजनेस को ज़िंदा रखने के लिए हर एक चीज़ वो ट्रिपल एच करने वाले हैं। वो लेके आएंगे, अपना पूरी जान लगा देंगे और सारा रोस्टर भी उस चीज़ में अलाइंड है कि वो हर एक चीज़ करेंगे टू मेक दिस द ग्रेटेस्ट रेसलिंग कंपनी ऑन अर्थ। और मैं ये बात बोलूँगा कि भाई इतना अभी हमने दोनों ने आई थिंक रिव्यू रिकॉर्ड करा है नाइट टू का, और जो चीज़ रोहित आज हमने देखी है ऐसा कुछ रेसलमेनिया में एक्सपेक्टेड मेरे को तो नहीं था कि इतनी ज़्यादा हाइप होने के बावजूद भी वो डिलीवर कर पाएंगे कि हम तब भी आके बोलें वाओ। क्योंकि हाइप थी कि ब्लड लाइन रूल्स है, रॉक है, ये है वो है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ अनबिलीवेबल। और मैं ये बोलूँगा कि भाई ना ही सिर्फ WWE नई एरा में जा रही है, असली अखाड़ा भी एक नई एरा में जा रहा है, हम एज अ रेसलिंग फैंस भी एक नई एरा में जा रहे हैं कॉन्टेंट के हिसाब से। और बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हर एक मैच के बारे में बात करेंगे। और पहले आ जाते हैं रिया वर्सेस बैकी पे नाइट वन। अगर कहीं एक्सपेक्टेशन से बढ़ के शुरू में ही परफॉर्म किया तो आई थिंक ये मैच था वो।
मेरी नज़र में अगर मैं बोलूँगा तो मेरी मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये मैच की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। अगर ये जो सेम एक्शन हुआ, अगर इसको थोड़ी शॉर्ट लेंथ में करते तो अच्छा लगता। पर्सनली मेरे को ये मैच, सही बताऊँ तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे मैचेस शार्लट फेयर वाले होते हैं रिया रिप्ली के साथ, जैसा इस तरीके का उस मैच, क्योंकि बहुत बड़ा मैच था। और या शायद ये भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इस मैच में टाइटल चेंज नहीं था एंड ऑब्वियसली रिया रिप्ली को ही चैंपियनशिप जीतनी चाहिए थी, तो मेरी नज़र में मेरे को सही में इतना अच्छा नहीं लगा मैच। मैं भले ही इंटरनेट पर या हर एक रेसलिंग फैन से सुना उनको मज़ा आया, पर्सनली मुझे इतना कुछ नहीं लगा इस मैच में खास, तो मैं ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करूँगा। मेरी रेटिंग भी 3 स्टार ही रहने वाली है। ये नहीं कह रहा ये मैच कोई बेकार था, बट ठीक है, ठीक ठाक मैच था मेरी नज़र में सिर्फ ये।
भाई देखो, आई डोंट थिंक हमारी रेटिंग में यहाँ पे कोई फ़र्क रहेगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मुझे ये मैच काफ़ी पसंद आया। और ये बोला भी जा रहा था कॉमेंट्री में कि भाई बैकी लिंच को फीवर है और मे बी उस चीज़ की वजह से मैच में थोड़े बहुत एंड मोमेंट पे चेंजेस करे, आई डोंट नो। लेकिन मेरे को क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी कम थी, मैं इसको बिल्कुल भी कहीं से ऐसे नहीं सोच रहा था कि शार्लेट वर्सेस रिया वाले लेवल का मैच मेरे को देंगे, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं पता था, बिकॉज बैकी से उतनी उम्मीद नहीं होती मुझे, आई डोंट नो वाई। लेकिन वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई, और जिस तरीके से रिया रिप्ली की डोमिनेशन कंटिन्यू हुई, पर ये भी दिखाया गया कि बैकी लिंच सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल कंटेंडर थी, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। रेटिंग मेरी रहेगी इसकी 3.5। लेकिन इसके बाद जो मैच आया रोहित, 6-pack लैडर मैच, भरपूर था मोमेंट से। WWE ने ऑब्वियस कर दिया था कि यहाँ पे टाइटल्स भी स्प्लिट होने वाले हैं जिस तरीके से वो ऊपर टांग के रखे थे। क्या इस पर ओपिनियंस रहेंगे कि डिलीवर हुआ या फिर और भी चीज़ें हो सकती थी यहाँ?
मेरे ख्याल से WWE को ये चीज में बिल्कुल मास्टर हो चुकी है कि कैसे अगर किसी मैच में स्टार पावर उतनी ज्यादा नहीं है तो फिर भी उस मैच को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, वो है मल्टी पर्सन मैच करके। और ये जो सिक्स पैक वाला लैडर मैच इसको बनाया इतनी मस्त स्टिपुलेशन के साथ। और यूजुअली हम WWE फैंस अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि हम पहले से सारी चीज़ पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दिमाग में चीज़ें उतने लोगों के नहीं आएगी। जब दो बेल्ट अलग अलग टंगी होंगी तो इसका मतलब जो टाइटल स्प्लिट है वो भी यहाँ से किया जा सकता है। और WWE ने बहुत ही चलाकी से उसे किया क्योंकि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के पास स्मैकडाउन वाला पेयर आ गया है और रॉ का जो पेयर है वो ऑस्टिन ट्रूथ के पास आ गया। और मेरे ख्याल से न्यू कैश रिपब्लिक के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन अगर इन दोनों अलग अलग टीम्स को चैंपियन बनाया तो वो अच्छी बात है। देखो मैच में डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि शायद कुछ और धमाके भी हो सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस मैच में कोई कंप्लेन करूँगा तो डिसरिस्पेक्ट होगी उस स्पॉट की जो जेडी मैकडोना ने लिया बाहर गिरने वाला, या फिर जिस तरीके से न्यू कैश रिपब्लिक ने भी इस मैच में परफॉर्मेंस करी और वो जो लैडर अपनी कमर पर तोड़वा रहे हैं। तो तीन चार बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट थे। अगर मैं अपनी मैच की रेटिंग की बात करूं तो यस, ये तो मान सकते हैं कि इसको बिल्कुल क्रेजी लेवल पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर ज्यादा रिस्क लेना हो जाता। बट स्टिल मैंने इस मैच को एंजॉय किया और मेरी रेटिंग इसमें रहेगी 3.5 स्टार।
आई थिंक कि रोहित ने इस बार थोड़ा डेव मेल्टर वाली टी शर्ट पाई है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा आराम से एनालिसिस किया है, बैठ के एक दिन का टाइम भी ले लिया रोहित ने पूरा नाइट वन को अंदर डाइजेस्ट करने का, और मे बी इस वजह से रेटिंग्स थोड़ी गिर गई हैं। कल शायद अगर थोड़ा जल्दी जल्दी में रेटिंग देनी पड़ती तो अभी यहाँ पे 5 स्टार ऐसे ही मिल रहे होते टॉफी की तरह। लेकिन आई डोंट डिसएग्री, ये मैच जो था अनबिलीवेबल था मेरे हिसाब से। तो भाई गार्गानो और चांपा को मैं शाउट आउट करना चाहूँगा, बिकॉज DIY भले ही DX बन के आई हो, लेकिन परफॉर्मेंस इन दोनों की इतनी ज़्यादा थी कि मतलब ऑसम ट्रूथ अगर मंडे नाइट ड्रॉ पे नहीं होते टीम तो प्रॉबेबली DIY ही इस चैंपियनशिप को जीतती और आगे जाके फ्यूड भी बन सकती है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ओवरऑल सब कुछ अच्छा था और ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था जो कि इस नाइट पर हमें देखने को मिला। तो रोहित मैं इसको दूंगा 4 स्टार, लेकिन आई थिंक जहाँ पे हमारी रेटिंग काफ़ी मैच भी होगी और हम टाइम भी ज़्यादा नहीं देंगे, टीम रेमिस्टीरियो वर्सेस टीम डोमिनिक अंड्राडे थे, अच्छा लगा सब कुछ, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे ऑनेस्टली इस मैच में।
ये कहीं से भी यार देखो रेसलमेनिया की मतलब मैं ये सोच रहा हूँ पूरा रेसलमेनिया देखने के बाद, स्पेशली जिस तरीके से पूरी रेसलमेनिया गई है, कि ये मैचेस हो भी क्यों रहे हैं। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं भाई इन सुपरस्टार्स की, लेकिन अगर रेसलमेनिया में कोई मैच करना है तो या तो उसकी बिल्ड इतनी धमाकेदार कर दो कि वो डिजर्व करे, और अगर उसकी बिल्ड नहीं है तो फिर भाई उसे रखो ही मत कार्ड पर। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ों की हाइप इतनी नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा सकती, और आयुष ने बोला कि भाई 5 स्टार टॉफी की तरह बटेंगे तो अभी आएंगे, लेकिन इस मैच में तो वो कहीं से भी नहीं है। मैं ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहता था इसलिए फिर भी शायद मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दे दी इसकी रेटिंग में, 2 स्टार से ज़्यादा तो उसको भाई बिल्कुल नहीं दे सकता।
मैं इसको मैच करना चाहूँगा IPL के ऑक्शन में, जैसे वो खड़ा नहीं करते कि ये 2 करोड़, तो मैं भी 2 करोड़, तो मैं भी यहाँ पे 2 स्टार की रेटिंग मैच करता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ थी जो कि इससे ज़्यादा इसकी रेटिंग दे सके। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, मुझे तो ये डोमिनिक वर्सेस रेमिस्टीरियो का जो एंगल बनाया गया यही बहुत रश्ट लगा जबरदस्ती का, बिकॉज कोई लिंक ही नहीं था इस पूरी चीज़ में, फिर वो बनाया गया ओवर 1-2 वीक्स की हम कुछ कर सकें, नहीं तो डोमिनिक के पास कुछ करने के लिए प्रॉब्लम था ही नहीं रेसलमेनिया में। जजमेंट डे के बाकी सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, लेकिन इसके बाद आई थिंक एक्सपेक्टेशंस कहीं पे हमारी जो बिल्कुल पानी जिसको कहते हैं ना फेर दिया। और मैं तो ऑनेस्टली भाई रोहित बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, अभी तक मुझे बात चुभ रही है कि आखिर कैसे जिमी और जे उसो एक 4-5 स्टार मैच नहीं दे पाए, वो भी रेसलमेनिया के स्टेज पे।
देखो इस मैच के बारे में कुछ भी बात करने से पहले ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये मैच अभी तक हुआ नहीं है, तो क्या है स्टोरी जिमी वर्सेस जे? इतने साल मेन रोस्टर में हो गए, अब तक कोई सिंगल्स मैच नहीं, दोनों भाई हैं, दोनों ट्विन हैं, दोनों की ब्लड लाइन की स्टोरी है, अब इनको मैच मिल रहा है कहाँ पे? रेसलमेनिया पे। इससे बड़ी जगह कोई हो नहीं सकती इस फर्स्ट टाइम मैच के लिए। तो दिमाग में तो 5 स्टार 5.5 स्टार पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा था। मैं स्टार की भी बात नहीं कर रहा, मैं इस मैच में जो स्टोरी होगी उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लैट, बहुत ऐसा लगा कि जैसे कि जबरदस्ती का इस मैच का प्रोड्यूसर कोई ऐसा बनाया गया है जो कि जे और जिमी उसो को नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैच दे सकते थे।
रोहित एक बात है कि कुछ लोग ना यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिमी उसो इज नॉट अ गुड सिंगल्स रेसलर, और जब मैंने इस बात को सुना, जब मैंने इस बारे में सोचा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आई कि यार ठीक है ये बात कहीं ना कहीं मैं सुन सकता हूँ, लेकिन क्या हम इसको ट्रू मान सकते हैं? बिकॉज कभी हमने देखा भी है जिमी को इतना सिंगल्स लगता
जिमी उसो को जिमी तो उसो को
जिमी को ब्लेम
करेंगे? जिमी उसो को अब तक इतने मौके मिले ही नहीं है, और जिमी उसो ने जो भी अभी तक सिंगल्स मैचेस किए हैं वो अपने हील रन में किए हैं, और अगर हील रन के सिंगल्स मैचेस को देखोगे तो उसमें तुम किसी भी बंदे को कभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली हील सुपरस्टार मैच में एक्ट ही ऐसे करता है जैसे वो इरिटेट करे, अनॉय करे फैंस को। जे उसो की तरह कभी उनको ऐसा शाइन करने का मौका मिला नहीं, और अगर ऐसा है भी तो क्या जिमी और जे उसो दोनों भाई नहीं है? और क्या इन दोनों ने कभी टैग टीम मैचेस अच्छे नहीं करे, तो ये तो मुझे फालतू की लगती है भाई। जस्ट बिकॉज जिमी उसो को कभी वैसा मौका नहीं मिला तो इस वजह से उनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, लेकिन जे उसो ने भी कहाँ कुछ खास उखाड़ लिया इस मैच में, मुझे तो कुछ नहीं दिखा भाई। मतलब
भाई ऐसे ऐसे ये जो बोल रहे हैं कि मौका नहीं मिला जिमी को, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिमी का ही मौका था यहाँ पे, उनको जीतना चाहिए था मैच ताकि कुछ इंटरेस्ट बनता, बिकॉज मेन इवेंट जे उसो, उनको क्यों चाहिए थी विक्ट्रियाँ? क्या हुआ भाई रोहित यहाँ पे जे उसो को जितवा के, अब क्या, अब आखिर कैसे बढ़ेगी स्टोरी आगे, तो खत्म हो गया यहीं पर
मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात है, मैंने आई थिंक प्रिडिक्ट तो जे उसो को ही किया था इसमें, लेकिन मैं कह रहा था कि जिमी उसो चाहिए, बट फिर भी जिस तरीके से मैच हुआ, अगर इसमें जे उसो भी ना जीतते तो शायद लोग और ज़्यादा इसके ऊपर बरस रहे होते। खैर ज़्यादा इसको अब स्ट्रेच क्या ही करें, बेकार मतलब मूड ख़राब कर दिया इस मैच ने पूरा। नाइट वन अभी तक मैं यहाँ तक कहूँगा कि मैं खुश नहीं था शो से, तो मेरी इस मैच की जो रेटिंग है वो ऑब्वियसली पिछले वाले मैच से तो ज़्यादा रहेगी, 2 स्टार से ऊपर है 3 स्टार, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि रेटिंग वाले एपिसोड में मैं इसको 4.5 तक तो लेके जाऊँगा, बट वैसा यार यहाँ पर कुछ भी नहीं था
भाई। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी है, मैं सोच रहा था 2.5 या 3 पर 3 दे देते हैं, 2.5 भी दे सकते हैं, आई डोंट नो, मैं स्प्लिट हूँ तो मैं बोलूँगा 3 out of 5, क्योंकि 2.5 भी दे दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगला मैच भी यहाँ पे भाई मेरे को तो मज़ा ही नहीं आया, और मेरे को ये भी नहीं समझ आया मतलब क्यों इस पूरे मैच में रोहित एंट्रेंसेस थी बेस्ट। डैमेज कंट्रोल वर्सेस बियांका बेलेयर, जेड कारगिल एंड नायोमी, व्हाई?
तो देखो दिस मैच वाज ऑल अबाउट जेड कारगिल, क्योंकि जेड कारगिल को उनको रेसलमेनिया में दिखाना था, और क्योंकि ये सिर्फ रेसलमेनिया जेड कारगिल का इस मैच के मतलब जेड कारगिल वाले मैच की वजह से रेसलमेनिया जेड कारगिल की अपीयरेंस की वजह से उनको कार्ड पर डालने की वजह से रेसलमेनिया में मैच था, तो मेरा तो 1 स्टार ही आएगा, वो बस जेड कारगिल उनके एंट्रेंस के लिए। अपनी वीडियो में बोला था मुझे ऐसा लग रहा है कि 3D में कोई डिज़ाइन किया है जेड कारगिल को और उनको जो है रियल लाइफ में उतार दिया। जेड कारगिल बहुत बढ़िया लग रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं था इस मैच में
भाई। और मैं भी यहाँ पे मैच करता हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना ये मैच टाइटल के लिए रख के टाइटल जितवा देते नायोमी बियांका को, कुछ ऐसा करते तो मे बी और इंटरेस्ट बनता कुछ स्टोरी में, पर आई डोंट नो कि ये टाइटल्स कैसे हटाए जाएंगे डैमेज कंट्रोल से। नाइट 2 पे आएंगे तो बात करेंगे डैमेज कंट्रोल के टाइटल्स की, लेकिन इसके बाद को मेन इवेंट था नाइट 1 का, बाय द वे मेरी रेटिंग भी 1 स्टार थी लास्ट मैच की, सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर, और यहाँ पे भाई अंडर डॉग हैज़ डन इट रोहित। मतलब बहुत टाइम से ये चीज़ बिलीव मुझे तो हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि WWE वो करेगी, तो मैंने सैमी प्रिडिक्ट किया था, बट मुझे ऐसा अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% सैमी वॉज द राइट गाय, लेकिन जो दिखाया गया स्टोरी में उसके हिसाब से मैं कंप्लेंट भी नहीं करूँगा कि सैमी क्यों जीत गए। क्या कहना है इस मैच के बारे में, क्या ये वो ड्रू मैकइंटायर शेमस गुंथर के लेवल पर था या फिर उसके नीचे रह गया?
अभी मैं आयुष को यहाँ पे घसीट के पकड़ के लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत बार मौकों में आयुष ने मुझे बहुत घसीटा है। मुझे याद है हमने कोई तो एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था, शायद गुंथर का ही था वो, जहाँ पे आयुष ने बोला था कि सैमी ज़ेन वो बिलीवेबल बंदा नहीं है, बट मैंने कहा था व्हाट इफ़ सैमी ज़ेन मैच में एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करे कि सिर्फ स्टोरी को साइड में रख दो, उस मैच की स्टोरी में सैमी ज़ेन गिरे पड़े हुए हैं, और वो एग्जैक्ट मूवमेंट आता है जिसको WWE ने स्प्लैश करके दिखाया, पहला स्प्लैश गुंथर का, दूसरा स्प्लैश, और उसके बाद सैमी ज़ेन जो अपना सिर पटक रहे हैं, अपनी टांगे पटक रहे हैं, बिल्कुल बंदा अगर डीमोटिवेटेड लाइफ में है वो सिर्फ सैमी ज़ेन के उन कुछ सेकंड्स को देख के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि चलो भाई काम पे निकलते हैं हम भी, जैसे सैमी ज़ेन मेहनत कर रहा है। और मैंने भले ही प्रिडिक्ट किया था इस मैच में कि गुंथर जीतेंगे, आई एम सो हैप्पी कि मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर गलत है, और मैंने बोला भी था कि मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि अगर सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। तो इस मैच के होने के बाद आयुष मतलब चलो अगर एक बार को ये देखें कि शायद सैमी ज़ेन बिलीवेबल है या नहीं, लेकिन उसके अलावा भी कोई और बंदा था नहीं यहाँ पे, और जितना लोग खुश हुए सैमी ज़ेन की विक्ट्री से, मुझे लगता है ये बेस्ट पॉसिबल वे करंटली था इस रेन को एंड करने के लिए।
भाई देखो जब हमने पहले बात की थी इसके बारे में, मुझे पता है मैं सैमी के बारे में क्या बोल रहा था, और ये फ़नी चीज़ है बिकॉज अब हम ये रोहित ने घसीटा मुझे वापस उस बात पे, तो मैं वापस इसको एक भी घसीट सकता हूँ कि हमने उल्टा बोला था और हमारी प्रिडिक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट थी। तो मैं सैमी के बारे में बोल रहा था, मैंने सैमी को ही प्रिडिक्ट किया, और यहाँ पे गुंथर के बारे में जो बोल रहा था उसने भाई सैमी की जो साइड ले रहा था उसने गुंथर को प्रिडिक्ट करा। तो मैं भी ऐसा था कि हमको पहले सोच लेना चाहिए था थोड़ा बैठ के ना कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा कुछ ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सैमी ज़ेन या चैड गेबल दोनों में से कोई भी ये चीज़ करता तो उसमें सेम रिएक्शन होता। WWE ने प्रॉब्ली यहाँ पे सेफ बैट लिया, बिकॉज गुंथर से जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किसी और के पास जाएगी जस्ट लाइक सैमी ज़ेन, तो मे बी वहाँ पे चांस है कि वो टाइटल की वैल्यू वो बरकरार रख सकते हैं। चैड गेबल एक गैम्बल हो सकता था, शायद वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता तो वो चैंपियनशिप खराब हो सकती थी। और इस चीज़ को हम ऐसे भी देखना चाहिए कि ये जो पूरा करा गया जो भी यहाँ पे सिस्टम, वो गुंथर को आगे बढ़ाने के लिए है। 666 डेज कोई कम नहीं होते हैं, और अगर गुंथर हार भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बेकार हो गए हैं, उनको आगे जाके और चैंपियनशिप्स जीतनी है और उनको पुश मिलेगा मेन रोस्टर में। रोहित, रेटिंग की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉचेस थे इस मैच में 2-3, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही इसने परफॉर्म किया, तो मैं इसको 3.5 out of 5 दूंगा। आई डोंट थिंक ये कोई क्लासिक मैच था, लेकिन ये मेरा मानना है इसका।
यार मैं पर्सनली बताऊँ तो जितने मैचेस अभी तक 5 matches हो चुके थे रेसलमेनिया में, तो सारे मैचेस बेकार थे, तो ये मैचेस मुझे फील बहुत अच्छा हुआ जब मैंने इसको देखा, मैं तो एंटरटेन हुआ। तो मेरी रेटिंग तो भाई यहाँ पे 4 star की रहेगी, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दे दिया बहुत कम दे दिया, आई थिंक 4 star मेरे हिसाब से ठीक है इस मैच की रेटिंग, क्योंकि एक मूवमेंट भी आता है यहाँ से, तो मेरे लिए तो टोटल मैं कह सकता हूँ ओवरऑल ये इन्जॉय करने वाला मैच था, आयुष की रेटिंग से बस थोड़ा सा ज़्यादा। अब है शो का आयुष मेन इवेंट, द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, द ब्लड लाइन वाला मैच, और इसमें इंप्लीकेशन भी डली हुई थी कि नाइट 2 में अगर ये मैच जीत जाते हैं रोमन रेंस एंड रॉक तो ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच होगा, तो ये नाइट 2 के ऊपर ही बहुत ज़्यादा असर डालता। और रॉक और ट्रिपल एच ने बैठ के सोचा जब इन्होंने शो लिखा होगा कि चलो यार कितने घंटे की है रेसलमेनिया, ठीक है, तो रॉक ने बोला भाई 45 मिनट तो मेरे हैं, और रॉक जो कि सबसे बूढ़ा है इस मैच में 51 year old, एक 50 मिनट्स के आसपास का मैच दे रहा है, सबसे पहले तो उनको अप्रिशिएट किया सारे इंटरनेट ने। और ये मैच ऐसा था कि जो बिल्कुल रॉक के फॉर्मेट के हिसाब से सही था, क्योंकि अगर एक फास्ट पेस मैच होता तो शायद इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन इस मैच में जो 100% जो पूरा फुलेस्ट बार तक लेके जा सकते थे वो रॉक ने किया। और रॉक, मुझे ये भी आयुष देख के बहुत अच्छा लगा कि जब ऐसी चीज़ें आई जहाँ पर रॉक को स्पॉट्स लेने थे तो कहीं से भी देख के ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी है कि भाई मैं तो हॉलीवुड में भी काम करता हूँ, मेरे ये ना टूट जाए, मेरी वो ना टूट जाए, चाहे वो रॉक बॉटम लेने की बात करो, चाहे वो उनका कोडी कटर के ऊपर सेल करने की बात करो। एक दो जगह थी जहाँ पर थोड़ा सा रॉक ने स्लिप किया, लेकिन मेरे ख्याल से 51 year old WWE में और कोई इतना बेटर काम नहीं कर सकता।
भाई देखो, जिस तरीके से वर्ड्स बोले गए रॉक के बारे में, डिसएग्री करूँगा तो मारा ही जाऊँगा, राइट, लेकिन मैं डिसएग्री करता ही नहीं हूँ। आई थिंक कि रॉक सिर्फ एक ही चीज़ बतानी भूल गए कि नाइट 1 वाला मैच भी ब्लड लाइन रूल्स था, लेकिन वो मैच के बाद हमें मैच शुरू होते ही पता लग गया। इनफैक्ट आई थिंक कि नाइट 2 से ज़्यादा ब्लड लाइन रूल्स तो नाइट 1 में थे, जिस हिसाब से कंट्रोल करा मैच को। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, रॉक जब वापस आए थे तो हम सेट इन स्टोन थे, बिकॉज कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीता तो सबको पता था कोडी विल फिनिश स्टोरी, रोमन रेंस को कोई पसंद नहीं करता है, वो तो लड़ता नहीं है। लेकिन रॉक जब आए तो सारे रॉक के अगेंस्ट हो गए। रॉक कल मैच में जो परफॉर्मेंस थी उस पर मैं आता हूँ, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस,
एक बार मैं बोलना चाहूंगा, नॉट सारे हुए थे, कुछ लोग हुए थे
कुछ क्राई बेबीज हुए थे, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई वो क्राई बेबीज का कोई पॉइंट गलत नहीं था। और अगर रॉक वर्सेस रोमन मैच होता तो आधी दुनिया भी बू कर रही होती उस मैच को। आई डोंट थिंक उस सिंगल्स मैच की स्टोरी लाइन कहीं आसपास भी उतनी अच्छी बन सकती थी कंपेयर टू ये पिवट जो WWE ने कराया। और अब ये कोई पहेली नहीं रहेगी, ये सब कुछ पता लग चुका है कि ये सच में पिवट था, ओरिजिनल प्लान रॉक वर्सेज रोमन था। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे रॉक से सुनने को मिला, जो उन्होंने वहाँ पर बातें बोली, वहाँ से मैं अपने वर्ड थोड़े अब वापस लेना चाहूँगा, मैं पीछे जाना चाहूँगा, बिकॉज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोहित हमको पता लगा कि कितना क्लियर थिंकिंग है रॉक के दिमाग में। मे बी जब इनिशियली ये सोचा गया था कि रॉक वर्सेस रोमन करना है तो उनके दिमाग में वो बेस्ट आइडिया था, WWE के दिमाग में वो बॉक्स ऑफिस आइडिया था कि ये काम करेगा। लेकिन विंस मैकमैन अगर होते, मे बी ये मेन इवेंट तब भी रॉक वर्सेस रोमन ही रहता। पर थोड़ा सा पुश मिला कि फैंस क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि क्राई बेबीज भी ज़रूरी हैं, और रॉक आउट ऑफ करेक्टर जाके ये बात बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर अब रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं या रेसलमेनिया देखने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि हम फैंस को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी ये बातें बोली जा रही थी कि अनोआई फैमिली सारी पावर छीन लेगी, मैकमैन्स को बाहर कर देंगे, ट्रिपल एच की जगह ब्रायन गेविट्स आ जाएंगे, भाई वो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि इस वीकेंड में रोहित, जितनी प्रेज़ हुई है रॉक की उतनी ही प्रेज़ हुई है ट्रिपल एच की। दोनों नाइट्स पे शो ओपन हुआ है बोल के कि पॉल लेवेक एरा है। अगर रॉक यहाँ पे कंट्रोल में होते तो ये बोलने भी नहीं देते कि पॉल लेवेक एरा। लेकिन ये सारी बातों के बीच में ये मैच ने जो डिलीवर करा नाइट 2 के मेन इवेंट में, रोहित ने जैसा कि बोला, रॉक को सबसे ज़्यादा प्रॉप्स जाते हैं। सेथ रॉलिंस और कोडी और रोमन ने जो करना था अपना काम किया, लेकिन रॉक को यहाँ पे परफॉर्म करना था इस मैच को बड़ा दिखाने के लिए। और अब तो सारी चीज़ें जो हो गई हैं हमको पता है, आई डोंट थिंक हमें बिल्कुल डिटेल में जाना चाहिए, मोमेंट्स में जाना चाहिए, लेकिन रोहित जो वो मोमेंट दिखाई गई एंड में लास्ट ईयर की, सेम कोडी बैठे हैं रिंग में, और ओवरऑल जो इस प्रेजेंटेशन थी, एंट्रेंस थी रॉक की, और रोमन रेंस की बॉडी के लिए भाई मैं 5 star दे सकता हूँ, बट इस मैच को मैं दूंगा 5 stars. आई डोंट नो कि आज के मेन इवेंट को मुझे क्या स्टार देने, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ 5 star.
अगेन जो हमारी स्टार रेटिंग रहती है वो इसी बेसिस पर रहती है कि वो मैच ने हमको कितना एंटरटेन किया, क्योंकि अगर मेल्जर जैसा कोई बंदा इस मैच को रेट करने चलेगा तो वो कभी भी इसको 5 star नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर हम कोई न्यू जापान में बैठ के रेसलिंग नहीं देख रहे या जापान में बैठ के नहीं देख रहे, ना ही यहाँ पर AEW के किसी हार्डकोर मैच की बात हो रही है. तो मेरी रेटिंग में यहाँ पर मैच करेगी, और यूजुअली 5 star मैच रेटिंग देते हुए बड़ा शॉकिंग सरप्राइजिंग ऐसा लगता है, लेकिन भाई ये मैच ही इतना कमाल है कि ये 5 star तो बहुत आसानी से लेके जाएगा. मैच में कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि लग रहा था स्लो पेस पर हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उसी वजह से थे क्योंकि फिर एंड में जाके जो WWE सीक्वेंसेस प्लान कर रही थी, तो बहुत एंजॉय किया इस मैच को मैंने. और स्पेशली रॉक की एंट्रेंस नहीं कैसे स्पेशल बना दिया था, रोमन रेंस आयुष ने बहुत अच्छा नोटिस किया भाई, फैट परसेंटेज बहुत कम करके आए हैं वो, इसलिए और ज्यादा उनकी डेफिनेशन नजर आ रही है. और कोडी रोड्स का एंगल
देखा हमने, ये चीज ट्रिपल एच ने आई थिंक खुद भी बोली कि कितनी बार हमने ऐसा देखा है कि जब से नाइट 2 की दो नाइट्स की भी रेसलमेनिया हुई है कि एक नाइट लीड कर रही है किसी चीज में जो सेकंड नाइट में भी मैटर करेगी. वो जो आउटकम डिपेंडेंट था ये मैच, वो बहुत मस्त था, और उसकी वजह से कोडी और सेथ का हारना और जिस तरीके से कोडी का पिन होना, वो नहीं भूलना चाहिए कि रॉक ने कोडी को पिन किया था, वो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी. मुझे लग रहा सेथ को पिन कराया जाएगा, लेकिन वो कोडी को पिन वहाँ पे किया, मतलब अनबिलीवेबल था वो जो मोमेंट सेटअप करी गई, जबकि ऑब्वियस हो गया था उसके बाद कि आज क्या होगा रेसलमेनिया में. और इसी से हम आ जाते हैं अब अपना फटाफट से नाइट 2 के ओपनर पे. भाई मैं तो चाहूँगा रोहित थोड़ा सा इसको हाइप कर दे, बिकॉज बोलने के लिए इतना कुछ है ना, और अब हम क्योंकि अभी अभी हुआ है ना, एक दिन नहीं हुआ इसको, तो अब ये बिल्कुल फ्रेश पड़ा है मेरे पास सारा थॉट. सेथ वर्सेस ड्रू फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप.
मैं एक तो यार सबसे पहले सेथ रॉलिंस को एक टाइटल देना चाहूंगा इस रेसलमेनिया में, वो है गिवर, बिगेस्ट गिवर, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया में जो भी किया सब सैक्रिफाइस किया उन्होंने. उस बंदे ने पूरे टाइम रेसलमेनिया से पहले इस चैंपियनशिप को बिल्ड किया जो नया टाइटल आया था, और रोमन रेंज को इतना प्रेज होता है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया. सेथ रॉलिंस ने मैं कह सकता हूँ कि शायद उस लेवल का तो नहीं किया, लेकिन अपने लेवल पर उन्होंने 100% वो काम किया है, और इन्होंने यहाँ पे सैक्रिफाइस किया ना सिर्फ अपना टाइटल बल्कि उन्होंने सैक्रिफाइस की अपनी मैच की क्वालिटी, क्योंकि ऐसा लग रहा था सेथ रॉलिंस को आते ही देख के जिस हिसाब से जिस पेस पर इस मैच को रखा गया सेथ वर्सेस ड्रू वाला, कहीं से ऐसा नहीं था कि आराम से मैच पहले बिल्ड हो रहा है उसके बाद मूवमेंट्स आ रहे हैं सीक्वेंस आ रहे हैं OMG, ऐसा नहीं था ये मैच सीधा ही जो है फिनिशर फेस्ट के साथ शुरू हो गया. ड्रू ने क्लेमोर लगाने शुरू कर दी, सेथ ने स्टॉम्प लगा दिए, तो सेथ की टाइटल भी गई, सेथ ने पहले मैच में भी कम्पीट किया, सेथ के मैच की क्वालिटी भी सेक्रीफाइस हुई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई बिगेस्ट गिवर है वो, तो सबसे पहले तो उनके लिए मैं तारीफें करना चाहूँगा. और जिस तरीके का ये मैच था,
सेथ रॉलिंस ने सबसे ज़्यादा बार कपड़े भी बदले हैं इस रेसलमेनिया में भाई, हमें नहीं भूलना चाहिए कितनी बार उनको वापस तैयार होकर आना पड़ा है इस पेपरव्यू में.
आज
ब्रॉक समझ के आए थे एड्रू को, आज सेथ ने सोचा है ब्रॉक है भाई 2 मिनट में खत्म करूंगा, ओपनिंग मैच है, वो रेसलमेनिया 35 वाला माइंडसेट लेके आए थे भाई, लेकिन तब चैलेंजर थे अभी चैंपियन थे तो थोड़ा काम नहीं किया वो.
यहाँ पे सेथ रॉलिंस का मैंने अपनी वीडियो में बोला मेरे को समझ नहीं आया भाई उन्होंने क्या पहना था, लेकिन यही मस्त लगता सेथ रॉलिंस को देख के कि आज उनका क्या रेसलमेनिया का गियर होने वाला है, दोनों गियर के पैसे ही कितने लगे होंगे वो भी एक अलग बात है, लेकिन ये कह सकते हैं कि डिजर्विंग मोमेंट ड्रू मैकइंटायर के लिए. एंड उसके बाद वो क्या हुआ भाई, मतलब ये मैच के ऊपर से तो मेरा पूरा ध्यान ही शिफ्ट हो जा रहा है, मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी से उस मैच के बाद वाली चीज़ के ऊपर आए. CM Punk जो कमेंट्री टेबल पर
बैठे, मैंने तो इस चीज़ को इससे कंपेयर किया, मैंने तो अपनी वीडियो में ये बात बोली है कि मैंने इसको कंपेयर किया सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस को, कि अगर भाई एडम रोज के रोजबर्ड्स को प्रमोशन मिल जाती कभी, या अगर कभी रेसलमेनिया में काम करने का मौका मिलता तो ऐसा कुछ उनकी एंट्रेंस दिखती. और सेथ रॉलिंस जो बन के आए थे, अगर मुझे पता लगेगा उस कॉस्ट्यूम को क्या बोलते हैं तो मैं वापस अगले पॉडकास्ट में ज़रूर बताऊंगा. लेकिन इस मैच में रोहित, CM Punk और ड्रू मैकइंटायर, ये ना मतलब मैच मेड इन हेवन हो गया भाई. अब मेरे को नहीं लग रहा कि जानबूझ के किया गया है, इनको पता था हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बनेगी भाई, क्या अनबिलीवेबल चीज़ चल रही है, वो भी रिंग साइड पे सिर्फ.
CM Punk अभी सिर्फ माइक पर ही बैठे हुए हैं, और वो जैसे ही ड्रू मैकइंटायर टाइटल जीत गए क्लेमोर लगाने के बाद, ये मैच की जो रेटिंग है इस पूरे सेगमेंट को ही हम रेट करेंगे. मैच सेगमेंट क्या मतलब, दो चीज़ें मिक्स ही हो गई यहाँ पे, कैश इन और ये. तो जब ड्रू मैकइंटायर इवन जीते भी नहीं थे मैच, और नहीं जब मैच जीत गए थे उसके बाद जब वो आते हैं CM Punk के पास, तो CM Punk उनको बोलते हैं चल भाई अब आ गया ना तेरे पास टाइटल, अब डाल इससे जितनी सेल्फी डालनी है तुझे सोशल मीडिया पे, तो उस गिमिक का भी वो यूज़ करके बोल रहे थे, लेकिन ज़्यादा ही ट्रिगर कर दिया उन्होंने. उसके बाद उन्होंने सर्किट वाली चीज़ करी, CM Punk को गुस्सा आया, कास्ट निकाला, उसे तोड़ा फोड़ा, परफेक्ट मौका डेमन प्रीस्ट के लिए, सब लोग डेमन प्रीस्ट को बोल रहे थे नूब, लेकिन आज डेमन प्रीस्ट ने खुद साबित कर दिया भाई तुम लोग नूब हो, जो तो मुझे नूब बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली कैश इन करके ड्रू मैकइंटायर को सेम नाइट पर ही हरा दिया और रेसलमेनिया में कैश इन हो चुका है ये। ड्रू मैकइंटायर का हैप्पी मोमेंट लास्ट नहीं करा ज़्यादा और वो जो है चैंपियनशिप हार भी गए हैं। तो अभी ये तो नहीं कह सकते आयुष कि ये डेविन प्रीस्ट जो जीते हैं वो ड्रू मैकइंटायर को खुश करने वाला है, लेकिन क्योंकि हमको पता है आगे के शोज किस तरीके से अलाइन हो रहे हैं WWE के, तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। और CM Punk का भी जो रोल WWE ने दिखाया वो भी बहुत अच्छा था। तो मैं सीधा रेटिंग के ऊपर ही आ जाऊँगा। मैं रीज़न नहीं ढूंढ पा रहा कि मैं क्यों इसको 4.5 स्टार से नीचे रेट करूं। शायद मैं इसको 5 स्टार तक भी लेके जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी मिक्स टाइप की चीज़ थी, मैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। थोड़ा सा तो ड्रू का मैच कॉम्प्रोमाइज़ हो, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी है वो बाद में अच्छी हो गई थी, जो भी कैश इन वाली चीज़ थी।
भाई देखो, मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर पहले मैच के बीच में ट्वीट करते हैं, फिर बाद में उस पर खुद ही रिप्लाई भी करते हैं। ये जो गिमिक है ना, कुछ नेक्स्ट लेवल पे। आई डोंट थिंक कि ड्रू मैकइंटायर को ज़रा सी भी 1% प्रॉब्लम है जो हुआ है उससे। मतलब रियल लाइफ के अगर मैं बात करूँ, वो इन्जॉय कर रहे हैं इस राइड को, इन्जॉय कर रहे हैं। और आई डोंट नो क्यों ये थोड़ा डार्क है, आई डोंट नो क्यों ये चीज़ ट्रेंड हो रही थी रोहित पर, इसका रेफरेंस कहाँ से आया वो भी मुझे नहीं पता। बट डेविन प्रीस्ट को आई डोंट नो लोग बोल रहे हैं बायसेक्सुअल अंडरटेकर, और वो ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे, हर जगह लोग कमेंट कर रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसे ऊपर चला गया। मैंने ये क्या हो रहा है भाई, डेविन प्रीस्ट चैंपियन बना है और ये क्या ट्रेंड हो रहा है उनके नाम पे? डेविन प्रीस्ट का खुद का नाम नहीं ट्रेंड हो रहा चैंपियन बनने पे। तो ओवरऑल WWE ने जिस तरीके से इसको करा, बहुत बिलीवेबल ऐसा लगता था कि हम बोल रहे थे कि इसी मैच में होगा कैश इन, इसी मैच में होगा, लेकिन तब भी जिस तरीके से कैश इन हुआ वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। और CM Punk के चेहरे पे वो स्माइल जब मैंने देखी ना डेविन प्रीस्ट को भागते हुए आते हुए, वो सेम स्माइल मेरे भी चेहरे पे थी, बिकॉज कौन चाहता था इस पॉइंट पे कि ड्रू मैकइंटायर की वो मोमेंट ज़्यादा देर टिके। भाई मोमेंट थी 5 मिनट की, ख़त्म, ड्रू मैकइंटायर टाइटल हार गए। और अब जो गुस्सा उनका CM Punk में निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है CM Punk को अपने ट्राइसेप्स थोड़े बचा के रखने पड़ेंगे, कहीं दूसरा वाला भी ख़राब ना हो जाए। ड्रू मैकइंटायर का गुस्सा थोड़ा तेज़ है। लेकिन इसकी रेटिंग अगर मैं करूँ, आई थिंक मैं बहुत खुश था इस पूरी चीज़ को देख कर, और मैं हैप्पी था कि अब रेसलमेनिया की नाइट टू बेटर होगी। 4.5 इसको मैं ओवरऑल रेट करूँगा, एंड आई डोंट थिंक कोई मुझे इसके आगे कुछ बोल सकता है। तो हम नेक्स्ट मैच पर चलेंगे, द प्राइड वर्सेज फाइनल टेस्टमेंट। ना तो एक किसी चीज़ का फाइनल टेस्टमेंट था रोहित, ना ही इसमें मुझे कोई देख के मैच में प्राइड हुई। सिर्फ स्नूप डॉग की कॉमेंट्री थोड़ी फनी थी, उसके अलावा आई डोंट थिंक यहाँ कुछ था।
मैं इस मैच को रिस्पेक्ट दूंगा उतनी ही जितना इसने रेसलमेनिया के कार्ड को रिस्पेक्ट दी है। तो भाई 1 स्टार की मेरी रेटिंग है, मैं तो बस आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से।
मैं तो भाई देखो इसको बस इतना बोलूँगा कि 1 स्टार भी जो है वो सिर्फ उस बॉच के लिए है जिसमें टेबल पहले ही टूट गई थी। बिकॉज बॉबी लैशली ऐसा मुझे लग रहा था आँखें बंद करके आया मैच में, बिकॉज उनको भाई टेबल खोलो तो सही, उसको ऐसे ही लिटा दिया भाई टेबल के ऊपर। वो टेबल खुली भी नहीं हुई है और वो टेबल पहले ही टूट गई स्पॉट से। और ये डडली बाबा रे डडली जैसा लेजेंड रिंग में खड़ा है और तुम वहाँ पे ऐसे कर रहे हो, एक चीज़ करनी थी वो भी सही से नहीं हुई। और ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट ये रियलिटी है। तो इसको बुरा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकता उसको बुरा क्यों लगा। बट हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, AJ Styles LA Knight। AJ Styles की नई एंट्रेंस, फाइनली वो थोड़ा हील लग रहे हैं और दे स्टिल डोंट वॉन्ट नन, लेकिन LA Knight यहाँ पे जीत गए रोहित, अपना रेसलमेनिया मोमेंट उनको मिल गया।
पता नहीं यार मेरे को, अगर मैंने ये फ्यूड नहीं देखी, सिर्फ पेपर के ऊपर मैं सुन रहा हूँ कि LA Knight और AJ Styles की फ्यूड हुई है, उनका मैच भी होगा रेसलमेनिया में या हुआ है, और ऊपर से जितना इन्होंने इसको पर्सनल दिखाने की कोशिश करी LA Knight जैसे जा के घरों में अटैक कर रहे हैं, तो सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई मैं पता नहीं क्यों नहीं हुआ इससे, क्योंकि ये ऐसा लगा कि मतलब अगेन मुझे शुरुआत से ये ज़बरदस्ती वाला ही मैच लग रहा है, और ये मैच ख़त्म होते होते तक भी मुझे वही वाली फीलिंग आई कि अरे चलो चलो आगे बढ़ो ठीक है जो भी तुमने किया। तो पता नहीं मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा ही नहीं आया इस फ्यूड को देखने में, जबकि मैं LA Knight को भी पसंद करता हूँ, मैं AJ Styles को भी पसंद करता हूँ। ऐसा लगा कि डिलीवर भी इन्होंने सही किया, फ्यूड भी सही थी, तो या तो मैं ही ज़्यादा आस कर रहा हूँ या ये था ही ऐसा, ये मैं आवेश से जानना चाहूँगा कि क्या कुछ सेम है।
मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियंस थोड़े डिफरेंट हैं एक्चुअली यहाँ पे, बिकॉज मुझे मैच ठीक लगा, अच्छा लगा, मैं इसके बारे में कोई ज़्यादा उल्टा नहीं बोल सकता हूँ। फ्यूड जो थी वो थी, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि इसको थोड़ा रश करा गया, थोड़ा और टाइम दिया जाता, लेकिन जो दिखाया गया फ्यूड में वो जस्टिफाइड था, कुछ उसमें ऐसा गलत नहीं था। और एट द एंड दोनों लोग किसी चीज़ के लिए लड़ नहीं रहे, तो फ़र्क क्या पड़ता है भाई, क्यों हो रही है फ्यूड। लेकिन मेरे हिसाब से LA Knight रोहित कहीं ना कहीं इनके बारे में हमने सुपरस्टार स्पॉटलाइट एपिसोड भी किया है, बहुत बात करी है कि इज़ ही द नेक्स्ट मेगा स्टार जो बोला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अभी कमियां है ना, या फिर हम कह सकते हैं वॉइड अभी बचा है, वो उनको पूरा करना है। और आई थिंक कि जबकि रेसलिंग वाइज ही इज गुड, क्राउड के साथ ऑब्वियसली कनेक्शन कमाल का है, वो कुछ तो मिसिंग है जो एक नेक्स्ट लेवल में उनको बिल्कुल पुश करेगा आगे। और इस वजह से मुझे एजे स्टाइल्स के लिए बुरा लग जाता है, बिकॉज एजे को हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर भाई डाल देते हैं जहाँ एजे अपनी पोटेंशियल रीच नहीं कर पाता। तो आई डोंट थिंक कि एल ए नाइट वो अपोनेंट था जहाँ पे एजे स्टाइल्स एक क्लासिक आके दे दें आउट ऑफ नोवेयर और हम भाई बोलें ये क्या हो गया। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी रेटिंग मैं तो अराउंड 3 दूंगा, एवरेज मैच था ये। लेकिन एजे को भाई जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है वो थोड़ा मुझे बुरा लगा। क्या हमारी रेटिंग मैच होती है डिफरेंस ओपिनियन के बाद भी?
रेटिंग तो मैच नहीं होगी ऑब्वियसली। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी जो मैं मतलब इस मैच से जो मैं शायद खुश नहीं हूँ इस वजह से, क्योंकि ये साफ साफ ऐसा लगा कि बस रेसलमेनिया में करने के लिए करा रहे हैं। अगर ये नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से फ्यूड की स्टार्टिंग होती जैसे WWE में रहता है तब शायद मैं इससे होता। अगेन वही वाला पॉइंट जैसे वो टैग टीम वाला मैच रे और डोमिनिक वाला हुआ था, वो लगा भाई जबरदस्ती इनको रेसलमेनिया में करना, वैसे ही था। तो रेटिंग मेरी यहाँ पे 2 स्टार है, बाकी आई थिंक इससे ज्यादा यहाँ पे अब क्या ही बात करें। अगला मैच आता है US चैंपियनशिप।
किसने सोचा था कि कभी AJ स्टाइल्स को 2 स्टार मिलेंगे भाई। मैं तो
अगेन इस मैच के बारे में इतनी ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरी कुछ ज़्यादा ही नफरत है, लेकिन ऐसा है नहीं। रेसलमेनिया वाली स्टेज पे कुछ और भी कमाल हो सकता था, बस मैं ये बोलूँगा। चलो ठीक है, इनका चैप्टर क्लोज भाई, अब इसको दोबारा से फ्यूड को रिज्यूम मत करना क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं रहेगा देख के। अगले मैच के ऊपर आते हैं। US चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट रैंडी ओटन वर्सेस केविन ओवंस, डिफेंड कर चुके हैं। और इस मैच में इस मैच से पहले रैंडी ओटन ने बोला था कि भाई एक ऐसा आरकेओ आने वाला है जो अभी तक उन्होंने ट्राई नहीं किया। और जब उन्होंने बोला ये तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा लोगन पॉल और रैंडी ओटन मिलके कुछ करने वाले हैं, बट वो स्पॉट आता है आयुष पॉप अप आरकेओ वाला।
भाई टू बी ऑनेस्ट रैंडी ओटन को वो बात कभी बोलनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज जितना वो बोल रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये तो बहुत नॉर्मल आरकेओ था। रोहित कैसा लगा इसको देख के कि ये कोई ऐसा आरकेओ है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हो भी सकता?
ये ऐसा आरकेओ तो नहीं था जो नॉर्मल था, लेकिन ये ऐसा आरकेओ भी नहीं था जैसा रैंडी ओटन अपने स्पेशल आरकेओस के लिए जाने जाते हैं। तो उस हिसाब से ऐसा लगा उन्होंने बिल्ड बहुत ज़्यादा कर दिया, लेकिन उस लेवल पर ये लेके नहीं गए उसको। लेकिन ओवरऑल मैं मैच बोलूंगा वो मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, वो गोल्फ कार्ट पे लेके आ रहे हैं वो कितना फनी था
भाई, वो पहले केविन ओवंस था भाई जिस तरीके से वो कार्ट पीछे लेके आ रहा, आजा भाई तेरे को भी मैं ले आता हूँ। और उनको आधे मैच के बाद जाके रियलाइज़ हो रहा है कि अरे एक दूसरे से तो लड़ना पड़ेगा नहीं तो मैच खत्म कैसे होगा। फिर वो कहते हैं चल कोई नहीं अभी थोड़ी देर और लोगन को ही मारते हैं भाई। और मैं पूरे समय ये सोच रहा था कि KSI का कब रोल आएगा, KSI कौन जानता था भाई, KSI है ही नहीं आज। और आई शो स्पीड्स को वहाँ पर डाला गया और माइकल कोल की यहाँ एक बहुत ही फनी लाइन थी जिसको मैंने मेंशन किया अपनी वीडियो में, भाई वो भौंक रहा था उसकी तरफ रैंडी ओटन की तरफ कि तू कौन है, धक्का दिया रैंडी को। और उसके बाद जब आरकेओ पड़ती है अनाउंसर्स टेबल पे माइकल कोल कहते हैं द डॉग इज डेड।
मुझे अगर मुझे कोई सबसे वियर्डेस्ट चीज बताए जो मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखूं तो वो है रैंडी ओटन और स्पीड एक दूसरे को देख रहे हैं और रैंडी ओटन को देख के स्पीड भौंक रहे हैं। तो भाई ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि
किसी ने ये भी बोला था कि रैंडी ओटन ने अब फाइनली स्पीड से बदला ले लिया विराट कोहली का। अब सारी ये जो आई थिंक एक बेस्ट चीज़ जो इसके बारे में बोलूँगा ना, जो जितना ही ये मैच एंटरटेनिंग था मज़ेदार था जो मूव्स थे, अगर इसके अंदर मुझे बेस्ट चीज़ बोलूँ मैं लोगन पॉल की, मैं बस चाहता हूँ मुझे 10 मिनट मिल जाए लोगन पॉल की प्राइम की मार्केटिंग की टीम के साथ, बिकॉज ये सारी चीज़ें कैसे डॉट्स अगर कनेक्ट हो रहे हैं आप अगर वो फिगर आउट कर लेंगे क्यों स्पीड को ही वहाँ डाला गया, क्यों प्राइम का वहाँ पे सब कुछ पड़ा है, क्यों रैंडी ओटन स्पीड को आरकेओ लगा रहे हैं, क्यों लोगन पॉल यहाँ रिटेन कर रहे हैं, भाई ये फिनोमिनल थिंकिंग है। और ये अपने आप ही बिहाइंड द सीन्स काम कर रही है हर चीज़ की, हर डायरेक्शन में सेल्स बढ़ रही हैं, कहीं पे व्यूज आ रहे हैं, कहीं पे कुछ पैसा बन रहा है, एक तीर से बहुत निशाने यहाँ पे लगाए गए। लेकिन रोहित कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि ये ब्रास नकल्स वाली चीज़ या तो थोड़ी ऑब्वियस होती जा रही है या लोगन पॉल उतना इन्वेंट नहीं कर पा रहे अपने मैचेस में। ये थोड़ा हार्श जज हूँ मैं, लेकिन क्या ये सच है?
ये इस वजह से भी है क्योंकि लोगन पॉल से हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ उनके मैचेस सिमिलर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके गिमिक का पार्ट है तो आई थिंक वो उसको ऐसे ही अभी कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। लेकिन लोगन पॉल को US चैंपियनशिप रिटेन हुई है उनकी, तो इसका मतलब कुछ और नई लेयर्स तो आएंगी। और अगर इस मैच की मैं रेटिंग की बात करूं तो ये मैच मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। मेरे हिसाब से रिजल्ट भी जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही था, शायद रैंडी ओटन जीतते तो एक मूवमेंट क्रिएट करने वाली और चीज़ हो जाती, लेकिन मेरी जो इस मैच की रेटिंग है वो रहेगी 3.5 स्टार।
आई थिंक मैं इसको बिल्कुल सेम मैच करूंगा दोबारा, आज हम बहुत इक्वल हैं, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि हमारी रेटिंग बिल्कुल सेम सेम चल रही है, लेकिन मैंने बोला था रैंडी ऑर्टन जीतने वाले हैं और उनको चैंपियनशिप देनी चाहिए, बहुत टाइम से दी नहीं है, तो मेरे लिए तो सरप्राइज था कि लोगन पॉल ने रिटेन किया टाइटल और जिस फैशन में किया वो भी बहुत बढ़िया था, बिकॉज केविन ओवेंस ने कम बैक करने की कोशिश करी, ब्रास नकल्स का यूज़ हुआ, सारी चीज़ें एंटरटेनिंग थी और इसलिए मैं यहाँ पे 3.5 दूंगा, बिकॉज जो मैंने नहीं सोचा था वैसा हुआ, तो उसके लिए सेम रेटिंग। बट बेली वर्सेस ईओ स्काई फॉर द विमेंस चैंपियनशिप, और विदाउट अ डाउट अगर कोई बेस्ट विमेंस मैच था तो क्या वो ये था?
आई थिंक यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी कुछ वैसे मैचेस से है, तो ये और ज़्यादा इजी हो जाता है पूरे रेसलमेनिया कार्ड में इसको बेस्ट मैच विमेंस डिवीजन से, क्योंकि एक तो इस मैच की स्टोरी भी अच्छी थी और मुझे भी अच्छा लगा कि इसको जो प्लेस किया गया, ऑब्वियसली मेन इवेंट में तो कहीं से भी होने नहीं वाला था जब नाइट टू में कोडी और रोमन वाला मैच है, लेकिन इसको को मेन इवेंट में रखा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि इस मैच को भी इतनी वैल्यू दी जा रही है, जो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। और इस मैच को क्यों वैल्यू मिलनी चाहिए, वो इस मैच की रेसलिंग की बात नहीं कर रहा ना, मैं पेस की बात कर रहा हूँ, जो स्टोरी टेलिंग थी यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा था कि कैसे एक दूसरे से ये लड़ रहे हैं, बेली की जो ट्रैश टॉकिंग है, ट्रैश टॉकिंग को नहीं बोलेंगे भाई, रियल फैक्ट्स को वो स्पिट कर रही थी कि मैं हमेशा से डैमेज कंट्रोल को आगे लेके जा रही थी लेकिन तुमने कभी मुझे अपना साथ ही नहीं समझा, ऐसे करके जो बातें बोल रही थी वो काफ़ी रियल फील हो रहा था। और जो बेली को मूवमेंट दिया, आई थिंक सब परफेक्ट था यहाँ पे, कुछ और कर देते तो भाई वो और अच्छा रहता, तो मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ इस मैच से जो WWE ने इसको किया, मतलब इसी तरीके से होना चाहिए था, और बेली मैच जीत गई है तो खुशी की बात वैसे भी है। मेरी रेटिंग पिछले कुछ मैचेस को जो मैंने रेट किया उससे ज़्यादा, लेकिन मैं इसको 4 स्टार दूंगा।
भाई देखो मैं भी यही बोलूंगा कि इस पूरी स्टोरी लाइन में मैंने कहीं ना कहीं ईओ स्काई पे तो ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज हम तो वेट कर रहे थे कि बेली चैंपियनशिप जीतेंगी, ख़त्म हो आगे बढ़े, लेकिन आज इस मैच को देखने के बाद रोहित थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी ईओ स्काई के लिए, बिकॉज अब ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं वही बेकार जगह पे बुकिंग उनकी उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन अगर अच्छी स्टोरी लाइन, बहुत अच्छी सिंगल स्टोरी लाइन भी दी जाए, ईओ स्काई मैच के अंदर तो डिलीवर कर सकती हैं। और आज जब ये मैच शुरू हुआ ना, मैं बहुत प्रॉपर बोर हो रहा था इस मैच में, प्रॉपर बोर कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इस मैच में, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है मैच, लेकिन एकदम से मेरी नज़र वापस गई मैच पे कि भाई ये तो पिकअप कर रहे हैं और वहाँ से पीछे नहीं आए, तो इसको मैं रेट तो 3.5 ही करूँगा, आई डोंट थिंक कि उससे ऊपर था, पर बेली की जो मोमेंट थी वो डेफिनेटली डिजर्विंग थी, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हम उस चीज़ का, और आई थिंक डिवीजन को बहुत नीडेड भी है वो चीज़, क्योंकि अब फाइनली थोड़ा बहुत स्मैकडाउन का फ़ायदा होगा, रिया रिपली एक तरफ इतनी स्ट्रांग चैंपियन थी, अब बेली को भी मौका मिलेगा अपनी चैंपियनशिप को बिल्ड करने का, एंड आई थिंक यहाँ पे लीड करते हैं हम अब फाइनली अपने मेन इवेंट में, कोडी वर्सेस रोमन ब्लड लाइन रूल्स। मैं क्या ही बोलूँ भाई, मेरे को लगता है पहले रोहित रेटिंग देके फिर बात करनी चाहिए इस मैच के बारे में।
यार मतलब बोलूं क्या यहाँ पे मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी देखो हम अपने पॉडकास्ट के 37वें 38वें मिनट में पहुँच गए हैं, यहाँ पे क्या मतलब कौन से डिक्शनरी, कौन से मैं नई लैंग्वेज सीखूं जो मुझे और नए वर्ड्स पता चलें, इनक्रेडिबल, ब्रिलियंट, आकर्षक, हिंदी में बोलूं कुछ भाई, मतलब सब सारे वर्ड्स।
चलो मैं क्वेश्चन, मैं इसको एक एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता हूँ, लेट्स सी कि हम कुछ आंसर तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। क्या ये मैच या फिर ये जो स्टोरी जिस तरीके से एंड हुई, अगर हम 30 से 40 रेसलमेनिया या फिर ऑल टाइम जैसे भी, इज दिस द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मोमेंट ऑफ ऑल टाइम?
ये आई थिंक बहुत सही क्वेश्चन है थोड़ा सा चीज़ों को और इजी करने के लिए। तो जब 30 से 40 हम रेसलमेनिया मोमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डैनियल ब्रायन का मोमेंट भी आता है जिसको लोग हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो भी जिस तरीके से हुआ था थोड़ी आज कोडी रोड्स को देख के सिमिलर वाइब्स आ रही थी और शायद अभी इमोशंस हाई हों, तो इस चीज़ को आंसर करना उतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये चीज़ सोचूं कि इस मैच में ना सिर्फ स्टोरी फिनिश हुई है बल्कि अंडरटेकर की इन्वॉल्वमेंट है, रॉक की इन्वॉल्वमेंट है, साथ में जॉन सीना भी हैं, अंडरटेकर ने चोक स्लैम मारा है, जॉन सीना और रॉक जो अपने आप में एक ऑल टाइम फ्यूड है, वो मूवमेंट आता है, ब्लड लाइन आती है, सोलो सिकोवा, स्पीयर, स्पाइक, क्या सब कुछ मतलब एक मैच
ऑलमोस्ट इतना... ये एक WWE 2K24 का ही मैच लग रहा है जिसमें कोडी कवर पे था तो वो इसलिए जीत गया।
ये कुछ ऐसा नहीं था कि जैसे सबसे ज़्यादा ऐसा, मतलब जैसे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हमारे पास 1000 पॉइंट्स और हमको इन पॉइंट्स के अंदर एक मैच बनाना है और 1000 पॉइंट्स इतने होते हैं कि भाई तुम सबसे अमीर हो गेम में, तो तुम जितने सब चीज़ें कर सकते हो कि अच्छा ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो बस वो सब कुछ किया। और ये मैं पॉडकास्ट करने से पहले भी आयुष से बोल रहा था कि देखो ट्रिपल एच जो है मुझे पता है कि वो 100% एक ऐसे बंदे जो स्टोरी वाइज बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब बिजनेस मार्केट कैसे करना है, हेडलाइंस में कैसे आना है, तो वो चीज़ में लोगन पॉल को बहुत अच्छी समझ है, लेकिन इस केस में लोगन पॉल है नहीं, इस केस में है द रॉक जो अपने कितने सारे ब्रांड्स चलाते हैं, तो ये जो फ्यूजन बना है इसी की वजह से ये वाला मैच डिलीवर हुआ, वरना अंडरटेकर का यहाँ पे आने का वैसे देखा जाए तो कोई सेंस था नहीं। लेकिन जब किसी हेडलाइन में, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर वो हिंदुस्तान टाइम्स हो या फिर वो सन के ऊपर आर्टिकल पब्लिश हो रहा हो, तो जब वहाँ पर लिखा होगा कि द रॉक गॉट चोक स्लैम्ड बाय द अंडरटेकर, तो वो एक ऐसी चीज़ होगी जो कि अटेंशन लेके आएगी किस किस कहाँ हुआ है, किस मैच में। अच्छा, रेसलमेनिया में कौन सा
पुराने था? पुराने फैंस जो रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों से डेफिनेटली वापस आएंगे एक बार चेक करने के लिए कि हो क्या रहा है, और वो कनेक्ट अगर उनको मिल जाता है तो मे बी वो आज के प्रोडक्ट में भी देखेंगे कि अरे कोडी कौन है, क्या हुआ, क्या है, क्या मैं देखूं एक बार सेकंड चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या मुझे कल मंडे नाइट रॉ देखनी चाहिए। तो वहाँ से मे बी सम फैंस ट्रिगर होंगे और वो वापस आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ब्लड लाइन रूल्स था, पहली बात तो भाई रोहित मेरे को लगता है 2 मिनट, आई डोंट नो कि हमें कितना और खींचना चाहिए इसको, लेकिन हम ओवर टाइम में अभी समय अपने पॉडकास्ट के, लेकिन हम यहाँ पे रोमन की ज़रा सी भी बात ना करें तो आई थिंक थोड़ा सा बुरा लगेगा, बिकॉज लोग ये बोल रहे हैं कि अब कोडी चैंपियन बन गया तो तुम उस तरफ देख के आगे बढ़ रहे हो, लेकिन रोमन का क्या। तो मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट हम लें यहाँ पे और बात करें कि रोमन की, अगर रोमन की पिछले 4 साल की मेहनत नहीं होती तो आज चाहे रॉक के अंडरटेकर या जॉन सीना कुछ भी कर लेते, ये पॉसिबल नहीं हो पाता मेन इवेंट जो आज हुआ है। तो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि रोमन साइड कैरेक्टर भी है, पर अब फील हो रहा है कि ही इज द मेन कैरेक्टर।
देखो ये जो है पॉडकास्ट की सबसे खास बात होती है अपनी वीडियोस के अंदर, ऐसा नहीं है कि हम ऑनेस्ट नहीं होते, लेकिन क्योंकि एक उसका टाइम, उसको चलाने का एक फॉर्मेट होता है, क्योंकि फिर यूट्यूब ऑडियंस बहुत डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रिलैक्स होकर अच्छे से बात हो सकती है। तो रोमन रेंस, मैं आयुष के साथ इवन यही बोल रहा था कि सब कुछ हुआ, कोडी रोड्स जीते, इतनी बड़ी मूवमेंट आई क्यों, इसीलिए आई क्योंकि ये रोमन रेंस की 4 सालों की मेहनत है, और रोमन रेंस को यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि भाई चलो बंदा हार गया, बिल्कुल खुशियाँ मना रहे हैं। मैंने ये बोला कि जितना मैं कोडी रोड्स की जीत के लिए खुश हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ रोमन रेंस के लिए। और मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस से यहाँ पे कोई चीज़ छीनी गई है, रोमन रेंस भी वो बंदे हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ में जो बेटर हो कंपनी के लिए, इस बिज़नेस के लिए। तो इस पॉइंट पर यही डिसीजन सबसे बढ़िया था, और ये सारी चीज़ तक WWE जो आज पहुंची, अगर अंडरटेकर को भी रॉक लाने की सोच रहे हैं या ट्रिपल एच लाने की सोच रहे हैं मेन इवेंट में, जॉन सीना, ये सारे लोग आ रहे हैं तो एक मूवमेंट के लिए, लेकिन क्या वो मूवमेंट उतनी वर्दी है इनके आने के लिए, और वो मूवमेंट क्यों वर्दी है, क्योंकि उसमें रोमन रेंस ने अपनी मेहनत की है, पॉल हेमन ने अपनी मेहनत की है। तो यहाँ पर रोमन रेंस को बिना अप्रिशिएट किया तो भाई कोई बात बन ही नहीं सकती। बट यस, अब आगे देखा जाए तो वी हैव कोडी रोड्स एज आर न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो वो एक, अब यहाँ से बोल सकते हैं कि पॉल लेवे कह रहा तो छोड़ो, एक नया लैंडस्केप, सब कुछ ही चेंज है अब WWE में।
आई थिंक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे सोचा गया होगा, बिकॉज जब ये सारी पिवट करी गई, जब रोमन वर्सेज रॉक ओरिजिनल आइडिया था, तो क्लियरली ना तो कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीतते, ना कोडी रोड्स कभी रोमन को हराते, मे बी रोमन रॉक को हरा के आगे बढ़ते और रिटेन करते। लेकिन जब ये पिवट करी गई और लोगों ने इतना वॉइस करा अपना ओपिनियन कोडी के बारे में, तो WWE ने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा ना भाई बैठ के, ऐसे ही थोड़ी कि यार लोग बोल रहे हैं चलो कोडी को जितवा देते हैं, क्योंकि रोमन की ये जो रेन है, मैं नहीं मान सकता कि रोमन रेन ने खुद इस पूरी चीज़ को, स्टोरी को सुन के, और स्पेशली कि आगे उनके साथ क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी देख के, तब हाँ बोला होगा कहीं जाके कि या हम ये चीज़ कर सकते हैं, रेन ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज रोमन के पास खुद भी काफ़ी कंट्रोल है इस स्टोरी को लेकर। वो ऐसे ही नहीं कि भाई रोमन तो हार रहा है, आई डोंट थिंक ऐसा कभी होना था। तो इस वजह से जो रिस्पेक्ट है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है रॉक, रोमन, कोडी, सेथ, इन चारों के बीच में इस पूरी स्टोरी लाइन को लेकर, वो बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से दिखाया गया लास्ट में, निक खान से गले मिल रहे हैं कोडी रिंग साइड, ब्रूस प्रिचर्ड बाहर आ रहे हैं, ट्रिपल एच आ रहे हैं, ट्रिपल एच रेस कर रहे हैं कोडी का हैंड, सारा रोस्टर वहाँ पे खड़ा हुआ है, बेबी फेसिस का लेजेंड्स हैं, ऑटन है, पंक है, ओएन, सेथ, ये सब कोडी के लिए वहाँ पे खड़े हैं। तो डेफिनेटली रोहित ये बताता है कि लॉकर रूम, ट्रिपल एच और ये सारे सुपरस्टार्स भी अलाइंड हैं कि कोडी इज नाउ आर चैम्पियन, और रोमन रेंस आगे जो भी करेंगे उस पर हमेशा सबकी आँखें रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बेस्ट डिसीजन था, और हमने सारी बातें कर ली, मैच के बारे में बातें नहीं करी, बिकॉज everyone knows कि क्या हुआ है। उसको 5 स्टार से हम कम देंगे तो फिर मैं वही बोलूँगा कि फिर क्यों हो आप रेसलिंग फैन, अगर ये आपके लिए 5 स्टार नहीं था तो फिर हम तो 10 साल पुरानी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं इसको।
ये अगर इस मैच में कोई खुश नहीं है, यहाँ से भी कमियाँ निकाल रहा है, तो भाई फिर लगता है WWE प्रोडक्ट नहीं है आपके लिए। अब मुझे पता,
आई थिंक एक कमी ये थी कि स्टोन कोल्ड नहीं आए, स्टोन कोल्ड आ जाते तो फिर भाई थोड़ी थोड़ी बियर भी पी लेते।
स्टोन कोल्ड आते तो एक जो डिफरेंस रहता वो था चोक स्लैम की जगह आता स्टनर, और सेलिब्रेशन एंड में फीका नहीं होता,
रॉक उसको सेल भी कर पाते एक बार फिर से।
हाँ यार वैसे देखा जाए तो ये हो सकता था, बट पता नहीं कुछ तो हुआ, चेंज हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, स्टोन कोल्ड नहीं थे, बट खैर एंड में सेलिब्रेशन भी थोड़ा वेट रहता, वेट मतलब कि बियर फेंकी जाती तो वो सेलिब्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। अब कुल मिला के भाई देखो रेटिंग ऑब्वियसली मुझे आयुष से पूछने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पता है 5 स्टार ही हम दोनों की रेटिंग है, क्योंकि इस मैच को हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अभी WWE में एरा बदला है, पॉल लेवेक एरा आया है, तो भाई अस्सी अखाड़ा में भी जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो रही है, कुछ स्पॉयलर्स नहीं मिलेंगे आपको यार, WWE की तरह हम इस चीज़ का स्पॉयलर तो नहीं दे सकते, बट यस डेफिनेटली वी आर कुकिंग समथिंग जस्ट लाइक ट्रिपल एच। नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा बहुत जल्दी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, रेटिंग वगैरह भाई सब कुछ कर देना। आपका बेस्ट आपको मैच कौन सा लगा रेसलमेनिया का, या सेकंड वाला भी बता सकते हो, तो पूरा जो Spotify पे कमेंट सेक्शन है वो आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे आपसे असली अगड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।